हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 11 और 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्थ। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्ताधरो न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देव यस्तवे वेदे सांगपद कामोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಕಥಾಧಾರ ಶಿವಾಸದಿಕಾರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ, ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಕೀ ಜೈ, ಅಧ್ಯಾಯ 18, ಜಿಸ್ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ ಹೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲಕ ದ್ವಾರ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೋ ಶಾಪ್. ಆಜ್ ಹಮ್ ಇಸ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 11 ಔರ್ 12 ಕೋ ಪಡೆಂಗೆ. तो अब तक हम जो पढ़ के आए हैं पहले उसमें थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि पहले वाले इससे पहले जो हम श्लोक अध्याय नंबर 11 पढ़ रहे थे वहां पर तो महाराजा परीक्षित ने अपना पराक्रम दिखाया कलयुग को और उसे अपने राज्य में घुसने नहीं दिया, उसे फिर भी पुरस्कृत किया कुछ जगहों पर रहने के लिए, लेकिन अपने राज्य की इस तरह से बंदोबस्त किया, इस तरह से अपने राज्य को सुरक्षित किया कि कोई भी कलयुग का शिकार ना बन सका. उसके बाद इस अध्याय के शुरू में सूत गोस्वामी ने ऋषियों से कहा, यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णत्याद्भुत कर्मणा. कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत कर्म करने वाले हैं, इसलिए ऐसे भगवान की कृपा से द्रोण पुत्र के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र के बावजूद भी वो महाराजा परीक्षित सुरक्षित रहे. और फिर महाराजा परीक्षित के विषय में बताया कि महाराजा परीक्षित भगवान के शरणागति थे. ब्रह्म कोपोत्थितात्यस्य तक्षकात् प्राण विप्लव, यानी कि उन्हें पता था कि तक्षक सर्प आएगा और मेरे प्राण ले जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी न सम्मो मोह रुबयात, उसके बावजूद भी वो मोहग्रस्त नहीं थे, भयभीत नहीं थे. कारण भगवत यर्पिताशय, क्योंकि उनका जो चित्त था वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित था. और वो कैसे अपने समस्त राज्य को त्याग के गए उसके विषय में बताया. उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थिति वैयासके शहु शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम. उत्सृज्य सर्वतः संगम, सारे संगों को छोड़कर कैसे विज्ञाता जित संस्थिति, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण अजित की स्थिति को समझा तो फिर कैसे समझा. व्यास के जहो शिष्यो, क्योंकि व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की थी और उन्होंने उनको भगवान के विषय में जब इतना सुंदर ज्ञान दिया तो उन्होंने गंगायाम स्वम कलेवरम, ना केवल अपने राजपाट को छोड़ा बल्कि गंगा के किनारे पर अपने शरीर को भी छोड़ दिया. नोत्तम श्लोक वार्तानाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोंत कालेपि स्मरताम तत् पदाम्बुजम. नोत्तम श्लोक वार्तानाम, उत्तम श्लोक कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जिनकी स्तुति वैदिक स्तोत्रों से की जाने वाली की जाती है, ऐसे भगवान की कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा था। जुषताम तत् कथा अमृतम, उनकी कथा के अमृत को चखने में ही सदा रहते थे। भगवान की कथा ही उनका जीवन बन गई थी, भगवान की कथा श्रवण करने से ही वो जी रहे थे। और स्यात् संभ्रताम अंतकालोपी, इस अंत समय में भी वो जब इसी स्थिति में थे तो फिर वो भ्रमित नहीं थे, मोहग्रस्त नहीं थे। क्यों? स्मरताम तत्पदाम भुजम, क्योंकि वो कंटिन्यूस भगवान के चरण कमलों को स्मरण कर रहे थे। तावत् कलिर्न प्रभवे प्रविष्टोपि सर्वतः यावदीशो महानुष्याम अभिमन्यव एकरा। कि अभिमन्यु के पुत्र जब एक क्षत्र सम्राट थे, वो इतने शक्तिशाली थे कि जब तक वो संसार तावत कलि न प्रभावित, तब तक कलयुग जो है वो अपना प्रभाव नहीं जमा सके। प्रविष्टोपि हसर्वता के, क्योंकि वो कहीं से भी प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण यावदीशो महान और व्याम, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली थे और ये जो प्रजा थी, पूरा पृथ्वी था, उसके ईश कौन थे? एक कराट, अभिमन्यु के पुत्र एक कराट सम्राट थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके प्रभाव के कारण कलयुग अपना प्रभाव नहीं जमा सका। यस्मिन् हनि यर्हयावे भगवान उत्ससर्षकाम तदैवे हानुवृत्तोस्ता अधर्म प्रभव कलि यस्मिन् नहनि। यानी जिस दिन, अहनी का मतलब होता है जिस दिन से, यावे इसका मतलब है कि जिस क्षण से, जिस दिन जिस क्षण से भगवान उत्ससर्गता, जिस गाम का मतलब होता है पृथ्वी, जिस टाइम से भगवान ने इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, तदैवे हान वर्तोस्या, उसी समय जिस टाइम पर भगवान चले गए, उसी समय तदा एव, यानी उसी समय ही इह इस संसार में अनुवृत्त, सब उसके जो आनंद था, जो सुरक्षा थी, वो सब इसी समय भगवान के साथ साथ उसके पीछे चले गया। और असौ प्रभव कलि, और उसी टाइम पर कलयुग ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। यानी अपने जीवन में यदि कलयुग के प्रभाव से बचना है तो फिर भगवान को कभी भी मत जाने देना, क्योंकि जैसे ही भगवान का पवित्र नाम, भगवान की कथाओं का श्रवण हमारे हमसे दूर छूट जाएगा तो कलयुग और अधर्म हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। नानुदेष्टि करिम सम्राट सारंग इव सारभू कुशल्यान याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट, सम्राट ने कलयुग से कुछ भी दोष द्वेष नहीं किया। क्यों? सारंग इव सारभुक, वो तो मधुमक्खी की तरह सारग्राही थे और कलयुग के अंदर भी उन्होंने एक महान गुण देखा। क्या? कुशलान याशु सिद्ध्यन्ति, कि यदि कलयुग में हम अच्छा करने के बारे में सोचते भी हैं तो उसी टाइम पर सफलता मिलती है। नेतराणि कृतानि च, और जो विपरीत सोचते हैं, अपराधमयी भावना जो होती है वो तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक हम उसको करते नहीं है। इसलिए केवल सोचने से ही जीव पवित्र हो जाता है। तो ये कितना महान गुण है कलयुग का। इसे आगे बताते हैं, किमनो बाले शुशुरेण कलिना धीर भीरुण अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको निषु वर्तते। किमनो बाले शुशुरेण, जो अल्पज्ञ होते हैं वो सोचते हैं कि कलयुग कलिना धीर, कलयुग जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। धीर भीरुणा, लेकिन जो धीर होते हैं वो कलयुग से नहीं डरते। इसीलिए अप्रमत्त प्रमत्तेषु, जो प्रमत्त है, लापरवाह हैं, उनको महाराज परीक्षित ने संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की थी, उनकी रखवाली की थी सतर्क रहकर, ताकि कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि कलयुग उनके ऊपर आक्रमण कर सके। उसके बाद बताया अपवर महाराज, सॉरी सूत गोस्वामी जो है वो ऋषियों को कह रहे हैं, उपवर्णितमे तत्वः புண்ணியம் பரீட்சிதம் மயா வாசுதேவ கதோபேதாம் ஆக்யானம் யத் ப்ரஹத் ப்ரச்சத் ஆக்யானம் யத் ப்ரச்சத கே उपवर्णितमे तत्वः, वो सब मैंने आपको उपवर्णित सही तरह से बता दिया। पुण्यम पारीक्षितमया, परीक्षित महाराज की जो पुण्य कथा थी वो मैंने आपको बता दी। और क्योंकि भगवान की भक्तों की जब आती है तो साक्षात भगवान की बात भी वहां पर आती है, इसलिए वासुदेव कथोपेताम आख्यानम यदा प्रच्छति। तुम लोगों ने बोला था कि हमें वासुदेव की कथा सुनाओ, तो वो अभी भगवान वासुदेव से संबंधित मैंने जो महाराज परीक्षित का इतिहास प्रसंग सुनाया, तो भगवान के विषय में वैसा ही सारी कथाएं मैंने आपको कह दी जैसे कि आप कहना चाहते थे, सुनना चाहते थे। और या यह कथा भगवत कथनी योरु कर्मणा, जो ये जो भगवान की जो जो कथाएं हैं, वो भगवान के विषय में जो जो कथाएं होती हैं, कथनी उरु कर्मणा, जो वही कथनीय है, वही कहने योग्य है, क्योंकि भगवान के कार्य बहुत अद्भुत होते हैं। ऐसे अद्भुत कार्यों को ही बोलना चाहिए। और गुण कर्मा श्रया पुंभी संसेव्यता संसेव्यास्ता बुभुषु भी, कि जो वास्तव में जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए कि वो भगवान की इन अमृतमयी कथाओं को श्रवण करें, उनको विनीत भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, इसी से जीव का कल्याण होगा। और वो सब कथाएं मैंने आपको बता दी। तो इतना सुनने के बाद जो ऋषि मुनि है वो बहुत ज्यादा आलंकित, मतलब उनको बहुत आनंद आ रहा था कि सूत गोस्वामी ने हमें कितना कुछ भगवान के विषय में बताया, भगवान की कथाओं के विषय में बताया। तो बहुत ही आनंद से उनका सत्कार करते हुए कह रहे हैं, सूत जीव समा सौम्य शाश्वती विशदम यश यस्तुम शशि कृष्णस्य मर्त्यानाम मर्त्यानाम्यमृतम् हिनः। सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर्विशदम् यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यमानामृतम् हिनः। सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर्विशदम् यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यनामामृतम् हिनः। सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर्विशदम् यशः यस्त्वं चंससि कृष्णस्य मर्त्यनामामृतम् हिनः। सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर्विशदम् यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यनामामृतम् हिनः। तो सारे ऋषि मुनि जो थे वहां पर, वो सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऋषय उचु सूत जीव समा सौम्य, सूत हे गोस्वामी जीव, आप जीते रहो। कितना जीव? समा अनेक वर्षों तक, कारण आप बहुत गंभीर हो। शाश्वती विशदम यश, शाश्वती मतलब इटर्नल, शाश्वत विशदम मतलब विशेष रूप से यश को प्राप्त करो। आप बहुत समय तक जियो, अनेक वर्षों तक जियो और शाश्वत यश को प्राप्त करो। यह त्वम शंससि, इसका कारण क्यों, आप मुझे क्यों इतना समय तक जीने के लिए आशीर्वाद दे रहे हो? तो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, यस्त्वं शंससि कृष्णस्य, शंससि का मतलब होता है बहुत ही सुंदर ढंग से कहते हैं। आपने भगवान की बातें इतनी सुंदर तरीके से बताई हैं, कृष्ण के विषय में इतना सुंदर बताया है कि मर्त्य नाम मृतम हिना, कि हम जैसे मर्त्य जीव जो हैं, जो मृत्यु लोक के प्राणी हैं, जो प्रतिक्षण मरते रहते हैं, जीवन भी उनका मृत्यु जैसा है, मतलब ऐसे व्यक्तियों के लिए अमृतम,
अमृत के समान ही नहा। निश्चित रूप से ये जो कथा आपने सुनाई है, इतने सुंदर प्रसंग आपने भगवान के विषय में सुनाए, इतनी महिमा भगवान की बताई, तो ये जो इतना सब आपने बताया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। यस्तुम शंससि कृष्णस्य, कृष्ण की लीलाओं को आपने बहुत ही सुंदर रीति से बताया है, और वो लीलाएं मर्त्यानाम मृतम हीनः, हम जैसे मृत्यु के आसन पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए तो अमृत के समान है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप वर्षों तक जियो, आप शाश्वत यश प्राप्त करो, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप कृष्ण की कथाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से समझा सकते हो। अनुवाद देखिए, उत्तम मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे कि जब हम भगवान के दिव्य गुणों का तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, तो हमें सदा श्रीमद् भगवत गीता में 4.9 भगवान के अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। भगवान ने 4.9 में कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, कि हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन और कर्म जो कि दिव्य है उनके विषय में जो जानता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति, वेत्ति माना जो जानता है तत्व से, जो तत्व के साथ रियलिटी के साथ शुद्ध भक्तों से जो मेरे जन्म और कर्मों के विषय सुनता है और उसे समझता है, तो क्या होता है, उसका लाभ क्या मिलता है। हम भगवान के विषय में सुन रहे ना, इसका लाभ क्या है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, भगवान के शब्द है, भगवान कहते बस तुम सुनते जाओ, मुझे मेरे बारे में सुनते जाओ, मेरे बारे में जानते जाओ, और इस बात पर यकीन रखो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब दिव्य है। बस तुम्हारा ये विश्वास जो है वो तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। अपनी श्रद्धा को कि कृष्ण जो है वो दिव्य है, वो जो कार्य करते हैं वो दिव्य है, उसको कभी भी टूटने मत दो। तो जब आपके अंदर यह विश्वास है कि कृष्ण ही सर्वज्ञ है, वो भगवान है, उनके जो कार्य हैं वो सब दिव्य हैं, तो क्या इसका लाभ होगा सिर्फ इतना जानकर, उस पर श्रद्धा रखने से क्या लाभ होगा। त्यक्त्वा देहम, देह तो त्यागेंगे, क्योंकि ये देह तो नाशवंत है, उसको त्यागना पड़ेगा, परंतु पुनर्जन्म नैति, दूसरा जन्म प्राप्त नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएगी आत्मा। भगवान कहते हैं मामेति, वो मेरे धाम में आ जाएगी, और मेरे धाम में जो एक बार आ जाता है तो क्या होता है, यद्गत्वा न निवर्तन्ति, वहां से कभी आना नहीं पड़ता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण रखना चाहिए, उनके कार्य यहाँ तक के जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं सब दिव्य होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। सारे कार्य दिव्य होते हैं, चाहे भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, चाहे स्त्रियों उन गोपियों के वस्त्र चोरी कर रहे हैं, या उनके साथ रासलीला कर रहे हैं, गोवर्धन उठा रहे हैं, या फिर जरासंध के साथ युद्ध करके एक बार भाग के द्वारिका में आके प्रवेश करते हैं, या फिर कालयवन के साथ युद्ध करके गुफा में जाकर छुप कर सो जाते हैं और रणछोड़ राय के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें महाराजा मुच्छकंद को उनके श्राप से छुड़ाना था। मतलब भगवान जो कुछ भी करते हैं, चाहे कुछ भी हो, भावतिक लिहाज से उसके अंदर कुछ भी ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, लेकिन वो सब कार्य दिव्य होते हैं। भगवान के हर एक कार्य में कोई न कोई रहस्य होता है जो हमारी साधारण बुद्धि नहीं समझ सकती। हमें बस इतना याद रखना है कि भगवान है कृष्ण, और कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सब दिव्य है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब वो इस संसार में होते हैं मानव समाज में, तो भी वो जो कार्य करते हैं वो सब आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे सामान्य जीवों की भांति माया के वश में रहकर ना तो कार्य करते हैं, ना ही जन्म लेते हैं, ना ही उनका शरीर भौतिक होता है, न सामान्य जीवों के समान परिवर्तनशील होता है। अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भगवान को और सामान्य जीवों के विषय में बता रहे हैं कि भगवान को हम सामान्य जीवों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले भगवान कहते हैं मेरे जो भी कार्य हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो सब दिव्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान सामान्य जीवों की बात ही माया के वश में नहीं है। माया के वश में जो चीज होगी वो कभी दिव्य नहीं होगी, वो तो भौतिक होगी और माया के वश ही बहुत होगी। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो माया है वो मेरी शरण में आने से आप उस माया से पार हो जाते हो, और जब हम भगवान की शरण में आकर ये माया से पार हो सकते तो क्या भगवान स्वयं माया के अंदर में होंगे। भगवान कहते हैं दैवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्याया, है तो बहुत इसको पार करना कठिन, परंतु मामे वयो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, मुझे प्राप्त करोगे जो मेरी शरण में आएगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान का कोई भी कार्य माया के अंदर में रहकर वो नहीं करते, वे सर्वदा अपनी माया से परे होते हैं और वो माया के अंदर रहकर काम नहीं करते और ना ही जन्म लेते हैं, ना ही उनका शरीर भौतिक होता है। हमारा शरीर भौतिक होता है परंतु भगवान का भौतिक शरीर नहीं होता, वो पूरे के पूरे परमात्मा है, न सामान्य जीवों के समान परिवर्तनशील होता है। भगवान का शरीर जो है वो सदैव नव यौवन की जैसा रहता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, बीमार नहीं होते। और भगवान दिव्य है, जो व्यक्ति चाहे भगवान से या किसी प्रमाणिक स्रोत से इस तथ्य को जान लेता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। यहाँ जैसे ये ऋषिगण बता रहे हैं कि यस्तुम शंससि कृष्णस्य मर्त्य नामा मृतम हीनः, कि जो भगवान के विषय में श्रवण कर लेता है फिर वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी वापस नहीं मरता। उसी तरह भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वापस से उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो मेरे माम एति, वो मेरे धाम में प्राप्त हो जाता है। वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है। जहाँ तक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वो वहाँ पर केवल भगवान की प्रेमा भक्ति करता है, उसे भगवान के धाम में आने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि वो शुद्ध प्रमाणिक गुरु से भगवान के विषय में श्रवण करता है और इस पर विश्वास रखता है कि भगवान जो है वो दिव्य है। अतएव जिस रूप में श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवतम में भगवान के दिव्य कार्यकलाप अंकित हैं, उनके विषय में हम जितना भी श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर और सरल उपाय बता रहे हैं भगवान के धाम में जाने का। जैसे जैसे आप भगवद गीता और भागवतम में लिखे हुए उन शब्दों को पढ़ते हो, उन भगवान की महिमाओं को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान के विषय में जब हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के शब्दों को जब श्रवण करते हैं, तो भगवान के दिव्य कार्यकलाप उनमें अंकित हैं और इस तरह से उनके विषय में हम जितना भी श्रवण करते जाते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं। जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना हमें ज्ञान होगा, भगवान के विषय में पता चलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इन आध्यात्मिक श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को इतना सरल बना के हमें दिया कि हम इसको श्रवण करते हैं और जैसे जैसे श्रवण करते जाते हैं तो भगवान की दिव्य प्रकृति के विषय में हम जानते हैं और जितना जितना भगवान के विषय में जानते हैं उतना उतना भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते हैं और भी प्रोग्रेस होती है हमारी भक्ति में। हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक कामनाएं हैं वो सब नाश हो जाती हैं। इसलिए ये सूत गोस्वामी को सब लोग मिलकर 88,000 ऋषि मुनि वो सब धन्यवाद कह रहे हैं, साधुवाद कह रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपके लिए हमारे हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि सूत जीव समा सौम्य आप अनेक वर्षों तक जियो, शाश्वती विशदम यश और विशदम यश बहुत ही महान यश को प्राप्त करो क्योंकि आपने हमें भगवान के विषय में इतना सुंदर रीति से बताया। यस्तम शौंस श्री कृष्णस्य इतना प्यारे तरीके से आपने भगवान के विषय में बताया है और वो भगवान के विषय में श्रवण करके मर्त्य नाम मृतम हीनः हम जैसे मरने वाले प्राणियों के लिए वो तो अमृत के समान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।